दिन भर तारीख 25 दिसंबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय कुलभूषण जाधव की इस्लामाबाद में मां और पत्नी से मुलाकात, बीच में थी शीशे की दीवार।
जो हमने उनके साथ वादा किया था उसको अपहोल्ड किया है, ना कम ना ज्यादा।
मुलाकात के बाद जारी किया गया जाधव का रिकॉर्डेड बयान, पाकिस्तान ने कहा ये मुलाकात आखिरी नहीं, क्या है मायने।
ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उनको जो मिलिट्री कोर्ट से सजा मिली हुई है उस पर अभी शायद अमल दरामद की कोई जल्दी नहीं है पाकिस्तान को।
और बीबीसी वर्षांत कार्यक्रमों की पहली कड़ी में आज बात चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और के श्रीकांत की।
सिंधु जिस तरह से इस साल के लिए वो काफी अच्छा रहा है, वेरी हैप्पी विद द वे श्रीकांत हैज परफॉर्म्ड।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीसी समाचार आदर्श राठौर से। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद समाप्त करने के लिए सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। वेटिकन में क्रिसमस के अपने भाषण के दौरान पोप ने कहा कि उन्हें आशा है कि दो राष्ट्रों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए बातचीत शुरू होगी। अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित करने के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पोप फ्रांसिस ने सार्वजनिक रूप से इस संबंध में बात की है। ग्वाटेमाला के अपने दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाने के फैसले का इसराइल ने स्वागत किया है। ग्वाटेमाला उन 7 देशों में से एक है जिन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के खिलाफ लाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था। इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इमैनुअल नाशो ने कहा, इसराइल ग्वाटेमाला सरकार के फैसले से खुश है। हमें लगता है कि ये दोस्ती का बहुत अच्छा संकेत है। ग्वाटेमाला लंबे समय से इसराइल का दोस्त रहा है और अब उसने अपना रुख साफ कर दिया है कि यरूशलम इसराइल की राजधानी है। ये थे इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इमैनुअल के शब्द। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हाल में बनाई गई राजनीतिक पार्टी ने लाहौर में अपना दफ्तर खोला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल्ली मुस्लिम लीग के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान हाफिज सईद जब वहां आए तो लोगों ने रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर कर उनका स्वागत किया। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि मिल्ली मुस्लिम लीग चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ी हुई है जिसका गठन हाफिज सईद ने किया था। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव सोमवार को इस्लामाबाद में अपने घर वालों से मिले। उनकी मां और उनकी पत्नी को उनसे बात करने का मौका मिला। जर्मनी में एक शख्स ने पेट्रोल के कनस्तरों से भरी कार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्लिन मुख्यालय में घुसा दिया। पुलिस का कहना है कि रविवार शाम को यह घटना हुई। आग को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करना पड़ा। इस आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो खुदकुशी करना चाहता था। बर्लिन पुलिस की प्रवक्ता पैट्रिशिया ब्रेमर ने कहा, को क्यों चुना ये अभी पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और पता लगा रही हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। हमें उम्मीद है कि वो शख्स सभी सवालों के जवाब देगा। ये थे बर्लिन पुलिस की प्रवक्ता पैट्रिशिया ब्रेमर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के कार्यालय के बाहर खुद को बम से उड़ा लिया। इस घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर पैदल आया और उसने उस वक्त खुद को उड़ा लिया जब लोग वहां काम के लिए आ रहे थे। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में इस तरह के बम धमाके बढ़ गए हैं। मई में एक ट्रक बम के कारण राजधानी के डिप्लोमेटिक एरिया में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई थी। उष्णकटिबंधीय तूफान टेम्बिन कभी भी दक्षिणी वियतनाम से टकरा सकता है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के प्रयास चल रहे हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। हो ची मिन शहर के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाने से भी मना किया गया है। ये तूफान फिलीपींस में पहले ही तबाही मचा चुका है जहां बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम 140 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। एक मुलाकात जिस पर थी दो मुल्कों की नजर। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी आज उनसे इस्लामाबाद में मिले। बीच में कांच की दीवार थी और उसके दोनों तरफ उमड़ती घुमड़ती भावनाएं। आंखें मिली लेकिन हाथ से हाथ को मिलाने की अनुमति नहीं थी। जाधव और उनके परिवार ने एक दूसरे की आवाज भी इंटरकॉम के जरिए ही सुनी। जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने इसी साल अप्रैल में उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। मई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की अपील पर इस सजा पर रोक लगा दी थी। गिरफ्तारी के करीब 21 महीने बाद आज जाधव की मां अवंतिका और उनकी पत्नी चेतना सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की। जाधव का एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भी जारी किया गया। जाधव को पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए सुना जा सकता है। उधर करीब 40 मिनट चली मुलाकात के बाद पाकिस्तान विदेश विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने करीब इतनी ही देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 40 सेकंड में सुनिए।
ये जी एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किया गया है जी। तो हमने किसी मुकदमा जीतने के लिए ये मुलाकात नहीं कराई, ना इसका इम्पैक्ट आएगा। ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ने उनके साथ वादा किया था उसको अपहोल्ड किया है। आधे घंटे की मीटिंग का वादा था, करीबन 40 मिनट तक चली गई। कमांडर यादव ने टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग रिक्वेस्ट की कि जी इसको अगर 10 मिनट बढ़ा दिया जाए। उनकी मदर ने भी एग्री, तो हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। गुफ्तगू हुई माँ की अपने बेटे से, वाइफ की अपने हस्बैंड से, एक अफसर हमारी भी वहां पे बैठी हुई थी, मगर ये आखिरी मुलाकात नहीं।
ये थे मोहम्मद फैसल। मैंने आपसे कुछ वक्त पहले इस्लामाबाद में मौजूद उर्दू सेवा के अपने साथी हारून रशीद से बात की और उनसे सबसे पहले पूछा कि इस मुलाकात के बाद किस तरह की तस्वीर उभर रही है।
पाकिस्तान की हद तक और पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियंसेस हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा शो था पाकिस्तान सरकार की तरफ से, ये बताने का कि वो इंसानी बुनियादों पर ये फैसला कर रही है। क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि हम इस तरह की किसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन अब उन्होंने उनकी वाइफ और जो वालिदा हैं उनको मिलने की इजाज़त दी है। तो पाकिस्तान में मीडिया और काफ़ी चीख चीख के ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है और इसको बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे जो ज्यादा हैरत की बात इसमें नजर आई वो ये थी कि अगरचे कुलभूषण यादव सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ लगे थे और उनका मुझे लगता था कि शायद ये शो होगा, लेकिन ये सारा शो जो है वो फॉरेन ऑफिस और सिर्फ फॉरेन ऑफिस ही चलाता रहा, इसमें कहीं भी सेना नजर नहीं आई। लगता यही है कि काफी पहले से सोच समझ कर ये सारा शो तैयार किया गया था और उसको उसी तरह से फिर एक्सिक्यूट भी किया गया है।
ये कहा गया ये काउंसलर एक्सेस नहीं है और ये भी कहा गया कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है, तो इन चीजों के क्या संकेत हैं?
भारतीय यहाँ पर डिप्लोमेट थे, उनको जो एक्सेस दिया गया वो सिर्फ ये था कि वो देख सकते थे दोनों की मुलाकात को एक शीशे के पीछे से, लेकिन वो ना उनको सुन सकते थे और ना कुछ कह सकते थे। तो इस वजह से वो टेक्निकली कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेट है, उस तक एक्सेस नहीं था, सिर्फ फैमिली के लिए था। फिलहाल ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उनको जो मिलिट्री कोर्ट से सजा मिली हुई है उस पर अभी शायद अमल दरामद की कोई जल्दी नहीं है पाकिस्तान को। अगर दोबारा रिक्वेस्ट हुई तो शायद दोबारा मुलाकात भी हो सकती है। तो लगता यही है कि पाकिस्तान अभी इतनी जल्दी सजा देकर इस मामले को निमटाने की उसको कोई जल्दी नहीं है।
लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मुलाकात कराई गई वो शीशे के आर पार थी, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाना या छूना उसकी सहूलियत नहीं दी गई। दूसरी बात ये भी कही जा रही है ये जो मुलाकात है एक पीआर एक्सरसाइज के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए ये किया है। आप किस तरह का इंडिकेशन ले रहे हैं?
देखें, यहाँ की सरकार तो ये कह रही है कि फिजिकल टच इसलिए जरूरी नहीं था कि सुरक्षा की उनको चिंता थी। तो वैसे कैदियों की अक्सर जेलों में होता है, इस तरह की मुलाकातें भी होती हैं कि जहाँ फैमिलीज से वो फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन बातचीत कर सकते हैं, और पीआर एक्सरसाइज बिल्कुल है। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये शायद करने की इनको इजाजत दी मुलाकात की कि ना सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंसेज बट अपने घर पे भी जो अपने लोग हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है वो कोई ज्यादा गैर मामूली इकदाम नहीं उठा रहा और इंसानी बुनियाद पर एक नरम दिल रखता है, एक नरम गोशा रखता है, और इसीलिए उनकी फैमिली को मिलने दिया गया है।
ये थे हारून रशीद, और अब वो प्रस्तुति जिसका आपको है इंतजार। आज से दिन भर में शुरू हो रही वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला की पहली कड़ी में बात खेल जगत की। एक ही खेल, एक ही गुरु और कामयाबी की लगभग एक सी कहानी। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में कोर्ट पर गौरव गाथा लिखने वाले के श्रीकांत की। सिंधु और श्रीकांत ने साल 2017 में कामयाबी की अपनी कहानी में कई नए पन्ने जोड़े। रिकॉर्ड बुक की सूरत बदलने के साथ उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल भी जीता। वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव से सुनिए इस साल इन दोनों खिलाड़ियों ने बैडमिंटन कोर्ट पर किस तरह सुनहरी चमक बिखेरी।
In the 11th year of the Super Series that all five titles have...
This 2017, of course, special hai. Very special because 2016, yes, Rio, and I won some of the Super Series and World Championship Silver. So I hope I would move forward with the same confidence and improve much more.
Shrikant Kedambi, a second title in 2 weeks. Only the fourth men's singles player in history to win four or more Super Series titles.
मैंने बहुत मेरे से हायर रैंक प्लेयर्स के साथ खेल चुका हूँ, मतलब खेला हूँ मैं। अभी करंट वर्ल्ड नंबर वन को हराया, तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को हराया मैंने। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए और ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है मेरे लिए।
कहते हैं यादें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं और उनमें से कुछ तो बस पलक झपकते ही बासी पड़ जाती हैं। क्रिकेट में भारत को 2017 के मध्य में एक ऐसी कड़वी हार मिली जिसे भुलाने के लिए भारत के खेल प्रेमियों को एक रात का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। बैडमिंटन के कोर्ट पर एक नया सितारा वर्ल्ड रैंकिंग्स में 30वीं पायदान से दूसरी पायदान तक के अपने अनूठे सफर की तैयारी में जुट चुका था। पाकिस्तान के हाथों क्रिकेट में मिली हार को भुलाने में किदाम्बी श्रीकांत की इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज की खिताबी जीत ने तनिक देर नहीं होने दी। जीत का सिलसिला शुरू हुआ श्रीकांत के लिए इंडोनेशिया ओपन से और खत्म हुआ फ्रेंच ओपन से।
Like I'm really happy that you know in every match you know in the end I really came up playing well। मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये चीज के लिए और you know सब मेरे लिए तो सब कुछ जो मेरा स्ट्रेटजीज था जो भी मेरा गेम था बहुत अच्छा हुआ था, मतलब बहुत अच्छा खेल पाया मैंने।
उधर 2017 में भारत की खेल दुनिया को परिभाषित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन कोर्ट्स की चमक बढ़ाने में जुटी थी हैदराबाद की बेटी पुसारला वेंकटा सिंधु। 2016 में रियो में ओलंपिक का रजत पदक जीतने के बाद शुरू हुआ पीवी सिंधु की जीत का सिलसिला जारी रहा 2017 में, और पहली जीत भारत की ही धरती पर राजधानी दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर सीरीज में दर्ज की रियो की अपनी हार का बदला लेते हुए पीवी सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मरीन को मात देकर अपने प्रदर्शन से खुश सिंधु ने खाचा खच भरे स्टेडियम के अपने प्रशंसकों के बीच अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया।
Of course, I'm really happy with my performance and of course she also played well and I think it's been really nice because the whole stadium was full cheering for both of us, so it was really very nice.
विश्व वरीयता क्रम में दूसरे स्थान को चूमा वर्ष 2017 में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत दोनों ने ही,
और दोनों के कोच भारतीय बैडमिंटन में नई जान फूंकने वाले पुलेला गोपीचंद ने कहा,
ओवरऑल सिंधु जिस तरह से इस साल के लिए वो काफी अच्छा रहा है। ओलंपिक साल के बाद ऐसी परफॉर्मेंसेस देना कभी कठिन हो सकता है, बट सिंधु जिस प्रकार से खेली वो काफी प्रशंसनीय है और काफी खुश हूँ कि मेंस वर्ग में वर्ल्ड नंबर 2 की स्टैंडर्ड लाना काफी अच्छी बात है और वेरी हैप्पी विद द वे श्रीकांत हैज परफॉर्म्ड दिस एंटायर ईयर।
आइए पहले एक नजर किदांबी श्रीकांत के 2017 के सुनहरे सफर पर, जिसकी चमक थोड़ी फीकी जरूर की उनकी जांघ की मांसपेशियों में आए खिंचाव ने। 4 सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले भारत के अकेले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने श्रीकांत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियन, डेनमार्क और फ्रेंच ओपन जीता, मगर टखने की चोट के कारण भी चाइना और हांगकांग ओपन से बाहर रहे श्रीकांत। अचानक चकाचौंध पैदा करने वाले श्रीकांत को बैडमिंटन की लत लगी बरसों पहले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत कर लौटे गोपी चंद को खेलता देख।
जब मैं स्टार्ट किया था फिर उस टाइम मैं पहला गोपी बाया से मिला था, फिर वो उसी टाइम गोपी बाया ने ऑल इंग्लैंड जीत के गुंटूर आए थे तो उधर मैं गोपी सर से मिला था, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलना। तो वो स्टार्ट था मेरे को, एक्चुअली वो बहुत मोटिवेशन दिया हुआ है ऐसा गेम, ये स्पोर्ट लेना है बैडमिंटन।
2017 का पहला खिताब इंडोनेशिया ओपन जीतने के बाद श्रीकांत को अर्जुन की तरह केवल और केवल मछली की आंख दिख रही थी। विश्व चैंपियनशिप की ओर लगी थी नजर परास्ता सुपर सीरीज। सो श्रीकांत बोले,
सुपर सीरीज टूर्नामेंट्स हमेशा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सुपर सीरीज लेवल वेरी फ्यू टूर्नामेंट्स है ऐसा सुपर सीरीज लेवल और ये बहुत हाई लेवल टूर्नामेंट्स है हमारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज के लिए और यू नो सब मेरे लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। मतलब
इंडोनेशिया ओपन की जीत ने श्रीकांत के लिए जीत के नए अवसरों की झड़ी लगा दी। गोपीचंद का मानना है कि इंडोनेशिया की जीत ने श्रीकांत के आत्मविश्वास को और अधिक प्रबल बनाया और उनके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेनमार्क ओपन और फ्रेंच ओपन में जीत का मार्ग प्रशस्त किया। आखिर क्या है किदांबी श्रीकांत के खेल में, उनकी बैडमिंटन की शैली में कि उन्होंने इतनी तेजी से विश्व बैडमिंटन में चोटी पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की? पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच विमल कुमार कहते हैं कि श्रीकांत की खासियत है मिलने वाले सभी अवसरों को अपने अनुरूप ढालकर अपने खेल में परिवर्तन कर लेना और जीत जाना। एक आक्रामक खिलाड़ी जो अपनी जीत के लिए अपने आप को नए रंग में ढालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। विमल कुमार,
continuously made use of the opportunities he got. You know, whenever he had to create an upset, he has always created that. You know, so that way I'm very impressed because he reminds me, like, you know, he's absolutely, he feels fearless. In the last 1 year, he has been really playing very well. You know, so, and I think, you know, it is a very good achievement.
उधर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रह चुके तौफीक हिदायत के कोच मोलियो हदोयो का मानना है कि श्रीकांत और तौफीक के खेल में काफी समानता है, हालांकि उनके शॉट्स उतने शक्तिशाली नहीं जितने तौफीक के, मगर ऑलराउंड गेम तौफीक का भी शानदार और श्रीकांत का भी उतना ही शानदार। पूर्व एशियाई चैंपियन दिनेश खन्ना को भी श्रीकांत के खेल में बहुत सारी खासियत दिखती है।
श्रीकांत बहुत ही एक वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं, हर तरह की गेम खेलने में वो समर्थ हैं और जिस तरह चाहे अटैक तो उनका है ही, बहुत अच्छा अटैक के लिए जाने जाते हैं, पर पिछले एक साल में उन्होंने अपनी फिटनेस का स्तर जो है वो काफी इम्प्रूव किया है, स्टेमिना अपना इम्प्रूव किया है और जब आपकी फिटनेस और स्टेमिना बेहतर होता है तो जाहिर है कि आपका आत्मविश्वास जो है वो भी बहुत बढ़ता है। पहले कई बार वो अटैक में चले जाते थे थोड़ा प्री मेच्योरली, जबकि अटैक की जरूरत नहीं होती थी तब भी, पर अब वो ठीक मौके के ऊपर जो है अटैक करते हैं।
साल 2017 जाते जाते श्रीकांत को एक झटका दे गया। हालांकि श्रीकांत हमेशा इस बात को कहते रहे कि रैंकिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर वो साल के आखिरी महीने में दुबई वर्ल्ड सुपर सीरीज का खिताब जीत जाते तो दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन जाते, मगर दुबई में कुछ खास नहीं कर पाए श्रीकांत। दिनेश खन्ना का कहना है,
के श्रीकांत को जब नेशनल चैंपियनशिप हमारी हुई है तो थोड़ी चोट लगी थी घुटने के ऊपर, और इसीलिए वो उसके बाद चाइना ओपन और हांगकांग ओपन प्रतियोगिता थी उसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। पर हमारी उम्मीद थी कि क्योंकि दो टूर्नामेंट के लिए उन्होंने रेस्ट दिया है, वो इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तैयारी से आएंगे, पर लगता ऐसा है कि जो वो ये दो टूर्नामेंट उन्होंने मिस किए हैं, थोड़ी मैच प्रैक्टिस जो है शायद उसमें वो लैक कर रहे थे। तो वो जो देखने को उनकी फॉर्म हमें मिली थी, चार सुपर सीरीज के खिताब जीते थे 2017 में, और हम सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस टूर्नामेंट में भी हमें वो बहुत अच्छी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही लीग स्टेज में ही जो है कोई भी मैच जीतने में सफल नहीं हुए।
फिलहाल श्रीकांत अपनी फॉर्म और फिटनेस को वापस पाने की कोशिश में जुटे हैं और पूरी तैयारी के साथ साल 2017 की विदाई से पहले प्रीमियर बैडमिंटन लीग में अपने रैकेट का कमाल देखना और दिखाना चाहते हैं। उधर 2017 का आगाज किया रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु ने। उनके हाथों से स्वर्ण पदक छीन लेने वाली स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मरीन को इंडियन ओपन में मात देकर दिल्ली में सिटी फोर्ट स्टेडियम में हजारों प्रशंसकों के बीच स्वर्ण पदक जीतकर वर्ष 2017 में अपने मजबूत इरादों का मुजाहिरा कर सिंधु ने ध्यान लगाया साल के अन्य खिताबों की ओर। 2017 में दो विश्व स्तरीय रजत पदक और दो सुपर सीरीज में खिताबी जीत हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने भी अपने खेल जीवन की शुरुआत पुलेला गोपी चंद की ही देखरेख में की थी जब वो केवल 10 साल की थी। याद है वो दिन आज भी पीवी सिंधु को।
गोपी सर मैं जब 10 साल की थी यू नो आई वाज ट्रेनिंग अंडर हिम सो सिंस देन आई एम 22 नाउ सिंस देन आई वाज विद हिम सो यू नो द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम क्योंकि यू नो आई हैव बीन इंप्रूविंग ईयर बाय ईयर बहुत इंप्रूव किया एंड आई एम हियर टुडे सो आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एज वेल एज माय कोच बिकॉज दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ।
अपने माता पिता और गुरु गोपी का कोटिशत धन्यवाद किया पीवी सिंधु ने। तो कैसे देखते हैं गोपी चंद सिंधु के 2017 के प्रदर्शन को?
अच्छा बहुत मानता हूँ क्योंकि दो सुपर सीरीज जीता है, दो फाइनल्स पहुँचे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, सुपर सीरीज फाइनल्स, हांगकांग, आई थिंक बहुत अच्छा, और वर्ल्ड के नंबर 2 रैंक पे खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है।
लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप में पदक मंच तक पहुंचने वाली पीवी सिंधु ने पदक का रंग बदला जरूर लेकिन स्वर्ण हाथ नहीं लग पाया उनके। कांटे की टक्कर हुई, लंबी रैलियां, लंबा मैच, थमती हुई सांसें, गजब की उठापटक। सिंधु के सामने थी जापान की नोजुमी ओकुहारा। महिला सिंगल्स के विश्व स्तरीय मुकाबलों में ऐसा मुकाबला शायद कभी नहीं देखा गया, यही कह रहे थे कमेंटेटर्स। स्कोर लाइन बयां करती है मैच की दास्तां, 19-21, 22-20, 20-22।
And now let's hear it for the runner-up in the women's singles in an epic final from India, Pusara v. Sindhu.
Well, it takes two players to make a great final, and it will go down as one of the great finals. A world championship silver medal for Pusara Venkata Sindhu to add to her Olympic silver medal.
हार जीत तो होती रहती है मगर ऐसी हार भी यादगार बन जाती है जब दर्शक निशब्द हो जाएं। तो क्या खुशी क्या गम, पीवी सिंधु ने अपने अंदाज में किया इस रोमांचकारी मैच का वर्णन।
बहुत खुश हूँ एंड ऑफ कोर्स पहले बार सिल्वर, लास्ट दो बार ब्रॉन्ज आए थे, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द सिल्वर एंड आई होप आई विश दैट आई वुड चेंज द कलर। वेल फाइनल मैच अच्छा था, लॉन्गेस्ट मैच था, 1 hour 50 minutes था, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग रैलीज थे एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल्स इज नॉट सो ईजी। इट वॉज ऑलमोस्ट देयर, लाइक 20 ऑल था, बट देन यू नो यू नेवर नो 20 ऑल के बाद कोई भी जीत सकता है एंड बोथ ऑफ अस रियली फॉट हार्ड बट दैट्स व्हाई आई सेड इट इज एनीबडीज गेम बिकॉज यू नो आई बोथ ऑफ अस रियली प्लेड वेल। ओकुहारा भी बहुत अच्छा खेली, मैं भी अच्छा खेली, लॉन्ग रैलीज था बट वो लास्ट जस्ट दो पॉइंट्स यू नो 20 ऑल के बाद इट वॉज एनीवंस डे।
कैसे जीतते जीतते रह गई सिंधु विश्व चैंपियनशिप का खिताब और कैसे फिसल गया स्वर्ण पदक उनके हाथों से, वो भी एक नहीं दो दो बार इस 2017 में, इसकी भी कुछ अजीब सी दुख भरी दास्तां हैं। दुबई में वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल में भी केवल दो अंकों का ही अंतर था हार और जीत के बीच। एक और जोरदार फाइनल जिसमें बाजी मारी जापान की अकाने यामागुची ने, पहला गेम हारने के बाद झपट कर छीन लिया पदक सिंधु के हाथों से। इन दो रजत पदकों के बाद दिनेश खन्ना ने किया सिंधु के खेल और मनस्थिति का विश्लेषण।
जहां तक इम्पोर्टेंट मैचेस की फिनिशिंग का प्रश्न है, उसमें थोड़ा सा शायद इनको साइकोलॉजिकली ये आत्मविश्वास थोड़ा अपने आप में ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जैसे कि हमने देखा है तीनों, खासकर ये दो जो पिछली बड़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ये सुपर सीरीज का फाइनल, जिसमें कि आखिर में पीवी सिंधु जो है, हालांकि वो यामागुची भी थकी हुई थी, वो भी थके हुए थे, पर यामागुची जो थी शायद थोड़ी कम थकान महसूस कर रही थी, और मैं समझता हूं कि पीवी सिंधु को थोड़ा ये देखना होगा कि अंत तक वो अपना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बनाए रखें।
तो क्या सचमुच दबाव में आ जाती हैं पीवी सिंधु? सुनिए जवाब इस सवाल का उन्हीं के मुंह से।
ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रेशर बढ़ता है, पर इट्स जस्ट द गेम, एंड उस दिन कौन अच्छा खेल के 100% एफर्ट्स लगाता है वही जीत सकते हैं, एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट आई डोंट गिव माय 100% एफर्ट्स, बट इट जस्ट समटाइम्स मे बी लाइक इट्स 19 ऑल एंड इट्स एनीबॉडीज गेम।
इंडियन ओपन और कोरियन ओपन के खिताबी जीत काफी हद तक सिंधु की बातों को सही ठहराती हैं, और फिर उनकी शैली और कद काठी का प्रभाव तो उनके खेल में दिखता ही है। पुलेला गोपीचंद कहते हैं,
सिंधु वैसे अगर देखा गया तो फिजिकली काफी स्ट्रांग प्लेयर है, काफी लंबी खिलाड़ी है, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते पर काफी मैचेस जीतती है, पर इस साल में उसके स्ट्रोक्स में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को आए हैं, एंड वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव बीन फॉर पीवी सिंधु।
और खुद सिंधु कहती हैं कि मूलतः वो एक आक्रामक खिलाड़ी हैं, मगर आजकल के खिलाड़ी ये जान गए हैं कि अगर वो सिंधु को आक्रामक शॉट खेलने का मौका दें तो फिर वो तो शॉट मारेंगी ऐसा जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए अब सिंधु को भी अपने खेल में बदलाव करना पड़ा है, कहती हैं पीवी सिंधु।
Normally I'm an attacking player, so but then nowadays it's that people don't give me to attack, they know that you know I'm tall enough, and then you know if they give I'm just gonna hit hard, so it really you know it's totally different now and keeps changing.
तो भारतीय बैडमिंटन के स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार की 2017 में किदांबी श्रीकांत और पुसाला वेंकटा सिंधु ने, तभी तो पुलेला गोपीचंद की माने तो 2018 भारतीय बैडमिंटन के लिए एक अच्छा साल सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं।
काफ़ी अच्छा साल रहा है ओवरऑल, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें आए हैं, और जिस तरह से मेन सिंगल्स का भी में हमने काफ़ी खिताब जीते हैं, और विमेंस सिंगल्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, और डबल्स में भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। काफ़ी खुश हूँ इस साल के परफॉर्मेंस से, और आने वाला समय और 2018 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए, और मैं मानता हूँ कि ये साल अच्छा रहेगा।
तो 2017 में सिंधु और श्रीकांत ने भारतीय बैडमिंटन और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए जो नए प्रतिमान स्थापित किए, आशा है 2018 में उसे और बेहतर करेंगे भारतीय खेल जगत और भारतीय बैडमिंटन जगत के नए पुराने सितारे।
Really need to make comment about two Indian players in the semi-finals. Of course, fourth consecutive world championship where an Indian player has medaled, but for the first time ever. Two medals for India, and how close it was for an Indian badminton player to secure a first ever gold medal.
मलय जी की प्रस्तुति पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। श्रोताओं से माफी की इस विशेष प्रस्तुति की वजह से हम आज आपकी राय नहीं सुना सके। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव सोमवार को अपनी मां और पत्नी से मिले। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद समाप्त करने के लिए सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ग्वाटेमाला के अपने दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाने के फैसले का इसराइल ने स्वागत किया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हाल में बनाई राजनीतिक पार्टी ने लाहौर में दफ्तर खोला है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया प्रज्ञा मानव ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।